संपूर्ण ब्रह्मांड को विस्मृति में डालती है। किम किम न विस्मरंती है माया मोहित चेतसहा यन्मोहितं जगत सर्वं अभीक्षणं विस्मृतात्मकम्। और कृष्ण के सखा क्या बोले कृष्ण से, कृष्ण के सखा कृष्ण से क्या बोले, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने ये अभी ग्रास भी नहीं खाया। हम खा रहे थे तो हम खा भी नहीं पाए और तुम आ गए। अभी भोजन हमारे हाथ में था, हम मुंह में डाल भी नहीं पाए और तुम आ गए बछड़ों को लेकर के, इतनी जल्दी आ गए। उनको एक साल का पता नहीं चला, एक साल में आओ अब हमारे साथ खाओ, हमारे साथ खाओ, चलो बैठो खाओ हमारे साथ। वो चुष्ट सुहृदा कृष्णम स्वागतम ते तिरंग न कोप्य भोजी कबल एही तहा साधु भोज्यता। तब भगवान हंसते हुए मित्रों के साथ अपना भोजन करने लगे। भगवान हंस रहे हैं, उनको पता नहीं चला कि एक साल तक क्या चलता रहा, यहाँ कृष्ण क्या लीला करी है। और जब घर को जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने अघासुर अजगर की खाल दिखलाई, अजगर की खाल एक साल के बाद। अब उन्होंने क्या सोचा, अभी तो मारा कृष्ण ने, आज ही अघासुर को मारा है, बस अजगर को, अजगर जानते कितना बड़ा शरीर था उसका, 12 किलोमीटर जो भी हो, 12 किलोमीटर कम से कम 12 किलोमीटर लंबा उसका शरीर था, पर्वत के समान है ना, इतना बड़ा शरीर। और एक साल में तो क्या हुआ, सूख गया था वो, है ना, सूखा था। तो वो जो है ना सूखा हुआ जो शरीर था, मरा हुआ शरीर वो दिखलाया, और ग्वाल बालों को याद आया कि आज कृष्ण ने इसको मारा है। और जब घर में आए तो अपने घरों में बताया कि आज कृष्ण ने बहुत बड़ा अजगर मारा है। ततो हसन ऋषिकेशो जब हृत्य सहार भके दर्शियन शर्माजगरम जबर तत बनाद्वनम। आगे अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी आगे की कथा सुना रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों से और फूलों से सजा है, और जंगल के कई प्रकार की धातुओं से रंगा है। जंगल की कई प्रकार की धातुएं हैं, लाल पीली नीली, इनसे रंगा है। और बांस की बंसी उच्च स्वर में गूंज रही है, और बछड़ों का नाम ले लेकर के पुकारते हैं भगवान, और उनके जो सखा हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, इस प्रकार सारे संसार को पवित्र कर रहे हैं। इस तरह भगवान अपने पिता नंद महाराज के घर में पहुंचे, और उनके सौंदर्य के दिखाई पड़ते ही समस्त गोपियों के लिए आंखों का महोत्सव हुआ, नेत्र महोत्सव, नेत्रों का उत्सव क्या है, कृष्ण का दर्शन। बर है पशुन बन धातु विचित्रितांग प्रोदाम वेणु दल श्रृंगर बोत्सवाढ़ गृणन अनुगीत पवित्र कीर्ति गोपी दृगत्सव दृषि प्रविवेश गोष्ठम। आगे ब्रज में पहुंचते ही बालकों ने बताया अपनी माताओं को, आज कृष्ण ने विशाल सर्प मार करके हम सबको बचा लिया। एक साल के बाद बताया, पूरा एक साल बीता। कुछ बालकों ने कृष्ण को यशोदा नंदन के रूप में, तो कुछ ने नंद महाराज के पुत्र के रूप में बताया, यशोदा नंदन ने मारा है सर्प, और कोई कहते नंदन नंदन ने मारा है सर्प। अद्याने महाव्यालो यशोदानंद सुनु नाम हतो विता वयम चास्मान इति बाला बजे जगु। राजा परीक्षित अब कहते हैं, अब राजा परीक्षित का प्रश्न है, क्या कहते हैं, हे महाराज, ग्वालों की पत्नियों में एक पराये पुत्र कृष्ण के लिए इतना प्रेम कैसे उदय हुआ? देखा परीक्षित क्या प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के बालकों को, बछड़ों को चुरा लिया, तो कृष्ण स्वयं जो है बछड़े बालक बन गए, और उन माताओं को जो है ना अब अपने पुत्रों में भी उतना प्रेम पैदा हुआ जितना कृष्ण में था। तब इससे पता चला परीक्षित को कि जो जो गौएं हैं और जो वृक्ष की माताएं हैं, वे अपने पुत्रों से इतना प्रेम नहीं करते हैं जितना कृष्ण से करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, यान प्रेमा कथम भवे यो भूत पूर्वस्तो कैसु सोद्भवे स्वपि कथ्यताम। तो क्या कहते हैं कि कृष्ण तो पराये पुत्र हैं, हैं? तो उनका जो ना पराये पुत्र में इतना प्रेम कैसे है अपने पुत्रों के छोड़ करके। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अब उत्तर सुनो क्या है। हे राजन, प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा प्यारा अपना जीवन है, बाद में अपना पुत्र है या पत्नी है। हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यारा अपना जीवन है, ये है विज्ञान, ये वैज्ञानिक ज्ञान है। ये हर व्यक्ति को अपना जीवन सबसे ज्यादा प्यारा है। संतान, धन, ये सब क्यों प्रिय लगते हैं? क्योंकि अपने जीवन को प्रिय है, इसलिए अपने जीवन को सुख प्राप्त हो जिनसे वो फिर प्यारे लगते हैं। ये सबसे प्यारा क्या है? अपना जीवन है, है ना। हाँ, सर्वेषाम अपि भूतानां नृपि स्वात्मे वल्लभां इतरे पत्य वित्ताद्यां तन्वल्लभे तये विहीम। इसलिए हे राजन, देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है, वह संतान, धन, घर, इनके अपेक्षा अपने शरीर में और अपने जीवन में आसक्त होता है, अपना जीवन ही देना चाहता है, अपना जीवन ही छोड़ना चाहता है, चाहे घर छोड़ जाए, पत्नी छोड़ जाए, घर पुत्र छोड़ जाए, अपना जीवन नहीं छोड़ना चाहता कोई व्यक्ति। सबसे ज्यादा प्यार अपना जीवन है, सही बात। तन्द राजेंद्र था स्नेहा स्वस्वकात्मनि देहिनां न तथा ममतालंबी पुत्र वित्त गृहादिषु। तो जो लोग अपने शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, तो उनके लिए शरीर ही सबसे ज्यादा प्यारा है। देहात्मवादिनां पुंसां अपि राजन्य सत्तम यथा देहा प्रियतम तथा नायनुं ये चतम। अब कृष्ण क्या है, अभी वो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर को मैं नहीं समझता हूं, मेरा समझता है, तो फिर वो अपने शरीर को अपने जितना प्रिय नहीं मानता। हाँ, इस शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर भी जिंदा रहने की आशा लगी रहती है। मेरा है शरीर, मैं शरीर तो नहीं हूं, मेरा शरीर है, तो ठीक है कैसा भी हो लेकिन जिंदा तो रहना है मुझे, ना? इस प्रकार से शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, इस भावना पर भी वो फिर शरीर से इतना प्रेम नहीं करता, नहीं जीवन से प्रेम करता है कि मेरा जीवन जो है मतलब किसी प्रकार बचे, है ना। लेकिन जो व्यक्ति अपने को शरीर समझता है तो शरीर थोड़ा भी खराब हो जाए, थोड़ा सा दिक्कत हो तो बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं तो मर गया। लेकिन थोड़ा सा अगर आगे बढ़ता है तो शरीर को अपना समझता है, तो फिर सोचता है ठीक है शरीर किसी भी तरह से भी हो, खराब हो, लेकिन किसी प्रकार में जिंदा तो रहूं, जिंदा रहूं। देहोपि ममता भाक चेत्यर्ह सोमनाथवत् प्रियः जीर्यतपि देहेस्मिन् जीवितासा बलियसी। आगे, इसलिए हर देहधारी जीव को अपना आप ही सबसे ज्यादा प्यारा है, इसी की तुष्टि के लिए चराचर जगत को समझता है, ये पूरा पूरा जगत जो है ना मेरे सुख के लिए है, वही सोच रहा है जी। तस्मात् प्रियतम स्वात्मा सर्वेषाम अपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगदे तच्चराचरम्। अब कृष्ण क्या है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अपना शरीर अपना जीवन ही सबसे ज्यादा प्यारा है हर व्यक्ति को, और कृष्ण क्या है, कृष्ण को सब जीवन का जीवन समझो, आत्माओं की आत्मा है, वे अपनी कृपा के कारण अहेतु की कृपा से सबके लाभ हेतु मानव के रूप में प्रकट हुए हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर ऐसा उन्होंने किया है। इसलिए ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते हैं, क्यों, क्योंकि कृष्ण ही जो है ना सब जीवनों को जीवन देने वाले हैं, सब जीवनों के जीवन है। कृष्ण मेन अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनाम जगत हेताय सोप्यत्र देहि वा भाति मायाम। जगत हेताय संसार के हित के लिए कृष्ण अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं, कृष्ण अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं, क्यों, आपके हित के लिए, क्यों, अगर आप कृष्ण की सेवा करोगे तो आपकी सेवा होगी, जैसे पेट में भोजन पहुंचाओगे तो आपके पूरे शरीर में जाएगा भोजन, है ना। तो कृष्ण सेवा का मौका देते हैं तो उनका हित नहीं है इसमें, आपका हित है, है ना, तो ये समझना है। इस जगत में जो लोग भगवान कृष्ण को यथा रूप में समझते हैं, वे चर अचर वस्तुओं को भगवान के रूप में देखते हैं, ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी वास्तविकता को नहीं मानते, और कोई सत्य नहीं है कृष्ण से बढ़कर के। वस्तु तो जानता मत्र कृष्णम मिथास्नु चरिष्णु भगवद रूपम अखिलम नान्यन वस्तु है किंचन। प्रकृति का आदि रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है, और इस सूक्ष्म प्रकृति के भी स्रोत भगवान कृष्ण है, तो भला उनसे अलग किसको कहा जा सकता है। सर्वेषाम अपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्णां किमेतन् वस्तु रूप्यताम्। इस संसार के आश्रय और मुर के शत्रु जो मुरारी नाम से प्रसिद्ध है, मुर के शत्रु, मुरारी का मतलब क्या है, मुर और अरी शत्रु, मुर के दुश्मन मुरारी, संसार के आश्रय हैं और मुर के शत्रु हैं, उनके चरण कमल की नाव को जिन्होंने प्राप्त किया है उनके लिए भवसागर बछड़े के खुर के समान है। बछड़े के खुर का गड्ढा कितना छोटा हो और उसमें आपको कोई खतरा नहीं है, क्या कोई खतरा है, डूबने का खतरा है या चोट लगने का खतरा है। बछड़े के खुर में जो है गड्ढा बनता है, उसमें जो पानी भरा है उसमें आपको किसी प्रकार का खतरा होता है या कोई परेशानी होती है, कोई असुविधा होती है? नहीं। उसी प्रकार से पूरा जो भव सागर है ये उनके लिए बछड़े के खुर के बने गड्ढे के समान हो जाता है। उनका लक्ष्य परम पद वैकुंठ होता है, जहां विपत्तियां नहीं होती हैं, पग पग पर संकट नहीं हो रहे हैं। ये भौतिक संसार क्या है, पदम पदम यद विपदाम, पग पग पर विपत्तियां हैं। ये भौतिक संसार का जो जो है ज्ञान है या परिभाषा है वो क्या है, ये भौतिक संसार शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत क्या कहता है कि भौतिक संसार की परिभाषा क्या है, वो स्थान जहां पग पग पर विपत्तियां हों, उनके लिए एक भी विपत्ति नहीं है, एक पग में भी विपत्ति नहीं है, क्योंकि बछड़े से बना हुआ जो खुर है उसमें क्या दिक्कत है, आप पैर रख दो उसके ऊपर भी पैर रख दो, है ना, क्या कुछ भी नहीं, कुछ है नहीं, है ना। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य सो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतेसाम। बहुत सुंदर भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमल नौका के समान है, लेकिन ये बड़ी विचित्र नौका है, ये साधारण नौका नहीं है भगवान के चरण कमल। कोई नौका होती है तो भाई आपको पार करेगी, लेकिन हो सकता पार ना कर पाए, बीच रास्ते में टूट जाए। लेकिन भगवान के चरणों की नौका क्या है, ये समुद्र को क्या बना देती है, बसने के खुर का गड्ढा बना देती है ना। तो फिर नौका में आप जैसे चढ़े और वह समुद्र रहा ही नहीं, बसने के खुर का गड्ढा बन गया है ना। तो ये नौका बड़ी विचित्र है, ऐसी नौका कभी नहीं सुनी है? फिर तो पार करना ही नहीं पड़ता है, पार करने की जरूरत ही नहीं है। आप नौका में बैठो और आप देखोगे कि पार हो गए, बिना पार किए आप पार हो जाते हो, वो रहते ही नहीं, समुद्र ही नहीं रहता है ना। ये विचित्र नौका है भगवान की। आगे अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आपने मुझसे पूछा इसलिए मैंने भगवान हरि की उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया जिन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की। 18 वर्ष लगने तक कोई जान नहीं पाया, कोई नहीं जान पाया 5 साल भगवान की जो है आयु 5वें वर्ष में थी, और 6वें वर्ष में जो है ये 1 साल की जो लीलाएं हैं कृष्ण की, ये ऐसी थी कि कृष्ण ही थे बछड़े और कृष्ण ही बालक थे, और छड़ी भी और रस्सी भी कपड़े भी सब है ना, मतलब कृष्ण ही थे, अद्वैत ब्रह्म है ना। उस समय ये था, जो मायावादी कहते हैं कि सब सब कुछ ब्रह्म है, मतलब सब कृष्ण है, ऐसा नहीं है। उस समय था, उस समय सब कुछ जो ना एकमात्र कृष्ण ही थे और कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती, मायावादी इसको हमेशा सच मानते हैं ये चीजें। इस तरह से वो कोई नहीं जान पाया, लेकिन हाँ कोई कोई तो जाना, ब्रजवासियों में कोई नहीं जान पाया, कौन जान पाया कृष्ण के अलावा, बलराम जी को कब पता चला, 1 साल में कुछ दिन बाकी, 5 दिन बाकी, तब बलराम जी को पता चला। बलराम जी तक को पता नहीं चला, और किसको पता चला, ब्रजवासी में तो किसी को नहीं, लेकिन और किसी को पता चला जो बाहर के, ब्रह्मा जी को, और किसको पता चला, आप लोगों को। ब्रह्मा जी के बाद अगर कोई और है इसको पता चला हो तो आप लोग हैं, परीक्षित महाराज को पता चला, 88,000 ऋषि मेरे सामने मैंने उनको भी पता चला, उसके बाद आप लोगों को पता चला, गुरु परंपरा के द्वारा का पता है। सर्वमेतं एतत्ते सर्वमाख्यातं यत् कृष्टोऽहं यः त्वयां तत्त्वमारे हरिकृतं पावण्डे परिकीर्तितम्। कौमारे हरिकृतं, कुमार अवस्था में भगवान ने जो काम किया था वो कौवंड अवस्था में ब्रजवासियों को बताया गया, मतलब अघासुर को मारा था जब भगवान 5 साल के थे, जब भगवान 6 साल के हुए तब ये बताया गया कि आज अघासुर को कृष्ण ने मारा है, बहुत बड़ा सांप था आज कृष्ण ने मारा है। 1 साल तक क्यों पता नहीं चला, हाँ तो वो बालक थे ही नहीं 1 साल तक, 1 साल तक वो थे ही नहीं तो कौन बताता, और कृष्ण है वो बताने वाले हैं, कृष्ण अपना चक्कर थोड़ी बताएंगे वो क्या कर रहे हैं चक्कर। आगे जो भी व्यक्ति अपनों जो सुनता है इस कथा को उसका क्या हाल होगा, जो व्यक्ति ग्वाल बालकों के साथ मुरारी की इन लीलाओं को, क्या अघासुर को कैसे मारा और जंगल के घास पर कैसे भोजन किया और भगवान ने अपने को प्रकट किया बालकों बछड़ों के रूप में, और ब्रह्मा की जो स्तुति है उसको सुनेगा और कीर्तन करेगा, उसके सब आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जय हो। ये तंत्र चरितम मुरारे अघातनम सात्वर जे मनम चाम व्यक्ति तरम लोकमजोर भिष्टम शर्मग्रणन्य तीन रोखिनाथाम। तात्पर्य मेरा कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में तन्मयता से लगे हुए भक्तगण इतने व्यस्त रहते हैं कि मन भरकर भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन नहीं कर पाते, लेकिन भगवान कृष्ण का सदैव कीर्तन श्रवण करने की प्रबल इच्छा के कारण वे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। जहां तक संभव हो इन लीलाओं का वास्तविक उच्चारण करना चाहिए, जितना संभव हो करना चाहिए। इस प्रकार ब्रज भूमि में आंख बचाने का खेल खेलते खेल में ही पुल बनाना ये जो कुमार अवस्था के कार्य हैं। कृष्ण जो है ना 5 साल तक जो है ये सब काम करते रहे। क्या? आंख मचोने का खेल खेलना 5 साल तक। 6 साल में थोड़ा बुद्धिमान हो गए तो फिर काम बंद कर दिए। 5 साल तक यही करते रहे। क्या? आंख मचोने का खेल और खेल में ही पुल बनाना। बालू का पुल बनाते हैं आप लोगों ने बनाया कभी? बालू का पुल बनाया? बालू का पुल बनाना और बंदरों की तरह कूदना फादना उछलना कूदना बंदरों की तरह।
भगवान रामचंद्र ने जो बंदरों के साथ लीलाएं की थी वे मर्यादा के अनुसार थी। उन्होंने बंदरों को चंचलता करने से रोका तथा गंभीर बनाया, परंतु यहाँ श्री कृष्ण बंदरों की संगति में स्वयं ही चंचल हो गए।
एवं बिहार कौमार कौमारम जहतुर्ब्रजे नीलायन सेतु बंधे मरकटोत्प्लवनादि भीम।
हाँ, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं लुकाछिपी या आंख में चौनी खेलते हैं, लुकाछिपी खेलते हैं, आंख में चौनी खेलते हैं। और लंका में जो है जो भगवान राम ने पुल बनाया था समुद्र के ऊपर, तो वो लीला करते थे बालकों के साथ में। कृष्ण वो लीला करते थे या क्षीर सागर मंथन की भी लीला करते थे कभी। कृष्ण है इस प्रकार से जो है कृष्ण ने अपनी कुमार अवस्था पूरी की है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति शीर्षक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहाँ जो है ब्रह्मा की स्तुति समाप्त हुई। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? धन्यवाद। इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि एक एक चोर की ऐसी इन्होंने कथा सुनी है कि जो वृंदावन में आया था कृष्ण के आभूषणों को लूटने के लिए, और बाद में उसने कृष्ण का दर्शन किया और फिर जो है वो भक्त बन गया। तो ब्रह्मा जी ने भी अगर इसी प्रकार से चेष्टा की है तो फिर ब्रह्मा जी को जो है ना फिर उससे मतलब भक्ति में उन्नति होना चाहिए। हाँ, अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक अंतर है इसमें। इसमें एक अंतर है। पहला अंतर तो यह है कि उस चोर का कोई अपराध नहीं था। चोर जब जो है चोरी करना चाहता था तो उसने अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भक्त ही नहीं था। आप समझे, जैसे अजामिल था अपने पुत्र को नारायण बोलता था और सब प्रकार के पाप कर्म करता था, तो उसका कोई अपराध नहीं हुआ क्योंकि वो भगवान नारायण का चिंतन नहीं करता था, तो वो नामाभास कहलाता है। तो वो चोर था तो उसने उसको कथा में केवल इतना ही समझ में आया कि वृंदावन में एक लड़का है, एक बालक है, वृंदावन में रहता है और उसके बहुत शरीर में जेवर है, बहुत सुंदर जो है। क्यों बात कर रहे हैं आप लोग? है? ये बातें करने की जगह है? है? ये जगह है आपको बातें करने के लिए? है? कौन बातें कर रहा है? कौन बातें कर रहा है? आप बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हो? मैं आपसे बोल रहा हूं। अपने बच्चों को संभालिए, कोई बात है नहीं, मुंह बिल्कुल बंद, बिल्कुल शांत, बात बिल्कुल नहीं। बच्चों को भी शांत करिए, कोई बात है नहीं, बात बिल्कुल नहीं, हाँ, तो पहली बात तो ये है, उस चोर का जो है, उस चोर को भगवान की प्राप्ति हुई, क्योंकि वो अपने जो है ना कर्म में जो है ना उसने जी जान लगा दी। उसको उसने सोचा कि मेरा कर्तव्य है चोरी करना, जो भी हो अभी वो जो है उस कर्म में बहुत बड़ी कठिनाई उठा रहा है। वो सोचता है कि भाई मेरा यही कर्तव्य है कि मुझे चोरी करना चाहिए, है? और उसके लिए बालक कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, है? उसने जब पता लगाया तो दिन रात चलता था, बिना खाए पिए चलता था कि मुझे मतलब वो छीनना है उस बालक की, है ना। तो बहुत बड़ी उसने तपस्या की, केवल इसलिए इंद्रिय तृप्ति को भूल गया, अपनी इंद्रिय तृप्ति भूल गया, खाने की चिंता नहीं, सोने की चिंता नहीं, मुझे वो बालक चाहिए, मुझे उसका वो लूटना है, क्योंकि मेरा ये काम है, मेरा ये कर्तव्य है। तो इससे कोई व्यक्ति शुद्ध होता है जब वो इंद्रिय तृप्ति के विचारों को छोड़ दे और वो जो है ना उस कर्तव्य में लग जाए कि मेरा कर्तव्य है ये। उससे उसे क्या प्राप्त होगा, फल क्या प्राप्त होगा, वो नहीं सोचता है कि मुझे फल क्या प्राप्त होगा कि मैं जो है ना घर मकान बना लूंगा, ये नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो वो मतलब कुछ सत्वगुण में रहा होगा जिससे कि वो कर्तव्य में जो है मतलब इतना स्थिर हो गया अपने कर्तव्य में कि उसने खाना पीना सोना सब छोड़ दिया, है ना। और जब बालक मिला उसे, भगवान कृष्ण मिल गए उसको, है ना, तो हंसी खुशी बातें करी उसने, प्रेम पूर्वक बातें करी उसने, है ना। और फिर जो है ना उसके ऐसे पुण्यों का उदय हुआ कि उसका फिर मतलब बिल्कुल विचार नहीं रहा कि वो कृष्ण के गहने छीने, और कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा पैदा हो गई उसको, है ना। फिर कृष्ण कहते हैं कि ठीक है ले लो, कहता नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, मुझे रोज दर्शन दे दिया करो, बस तुम रोज यहां आकर के मुझे दर्शन दे दिया करो, मैं यहां पर अपना पड़ा रहूंगा, कुछ भी खाऊं पीऊं जैसे भी हो यहीं पड़ा रहूंगा, बस रोज दर्शन दे दिया करो मुझे, बस इतना जो है ना वो उसका मन बदल गया। इसका मतलब है कि वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा था, वो कुछ गलत संगति से उसको चोरी का कर्तव्य ही पता चला जीवन में, है ना। कोई व्यक्ति है उसको जो ना अपना कर्तव्य ही पता चलता है, क्योंकि उसे कोई और प्राप्त ही नहीं हुआ, कोई ज्ञान कोई गुरु नहीं प्राप्त हुआ, या कोई गुरु प्राप्त हुआ उसको यही बताया कि यही सबसे बड़ा अपना कर्म है, तो उसने जो है ना उस कर्म को उसने किया कर्तव्य भावना से किया, किस प्रकार से उसने भगवान को प्राप्त किया, है ना। लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी की स्थिति वो नहीं है। ब्रह्मा जी जो है मतलब अपने को अपराधी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, जानते हैं कि भगवान है लेकिन उन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए इसलिए। हालांकि ब्रह्मा जी का कार्य भी कोई ऐसा अपराध का नहीं है, और वो जानते हैं भगवान क्या है कहते हैं, और भगवान का कोई विशेष ऐश्वर्य देखना चाहते हैं, लेकिन ये भक्त का एक लक्षण है कि वो अपने को गलत मान लेता है कभी, अपने को बड़ा अपराधी मान लेता है। लेकिन एक दृष्टि देखा जाए तो कोई अपराध नहीं है, ब्रह्मा जी ने मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब पूरा पूरा संदेह हो कृष्ण भगवान है कि नहीं, थोड़ा सा संदेह हुआ पैदा या नहीं हुआ, जो भी हो उन्होंने भगवान की कुछ विशेष ऐश्वर्य देखना चाहा जिससे कि वो संतुष्ट हो, है ना। तो ये ऐसे समझना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति होता है राजा है, और राजा के जो ना जो समीप जो सेवक होते हैं वो हमेशा राजा के ऐश्वर्य को देखना चाहते हैं कि अपने ऐश्वर्य में रहे हमेशा, लेकिन राजा को अगर वो देखता है कि एक फैक्ट्री में काम कर रहा है नौकर की तरह, तो वो जो ना मतलब प्रसन्न नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में वो उनसे कैसे बातचीत करे। एक साधारण फैक्ट्री में एक जो है ना मजदूर के रूप में राजा काम कर रहा है, तो राजा का जो सेवक जो हमेशा राजा को देखता है ऐश्वर्य में, वो कैसे बातचीत करे, कैसे उनका गुणगान करे। तो वो कुछ ऐसा करता है जिससे कि उसे पता चले कि नहीं ये जो है ना वो नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो ना देखना चाहा भगवान का ऐश्वर्य, लेकिन अपने को अपराधी भी मान रहे हैं तो दूसरी बात है। आपका प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है अजामिल का। हाँ एक सेकंड, पहली बात अजामिल जो है पक्का ब्राह्मण था, सदाचारी ब्राह्मण था, उसने सब छोड़ दिया तो उसने फिर पाप किया या अपराध किया? हाँ अपराध किया, लेकिन साथ साथ उसकी कुछ मजबूरियां थी। हरि बोल, लाइट चली गई उधर से। अजामिल की जो है कुछ मजबूरी थी और भगवान देख रहे हैं कोई व्यक्ति गिरता है भक्ति की पद से तो कैसे गिर रहा है और वो कितना प्रयास कर रहा है चलने का। अजामिल का वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि जब वो विषय का चिंतन कर रहा था तो उसने अपने को बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश किया उसने कि मैं ना गिरूं, गलत रास्ते पर ना चलूं, लेकिन वो फिर अपने मन को रोक नहीं पाया। तो भगवान ये देखते हैं, भगवान ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति कितना प्रयास कर रहा है, भगवान देखते हैं और भगवान ने उसकी सहायता की। सबसे बड़ा अपराध होता है वैष्णवों का अपराध, अगर वैष्णव